अगर पूछे कोई मुझसे तो मैं कहूं कि स्वर्ग बस यही है।
गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दृष्टिकोण में बसते हैं स्वर्ग नरक। देवियों भाइयों,
ज्ञान की समस्याएं सुझाने और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए जिन दो कार्यों की आवश्यकता होती है, अपने शांतिकुंज शिविरों में मैं उनका विवेचन करता हुआ चला जा रहा हूँ।
मेरी इच्छा थी कि आप लोग यहाँ आएं और यहाँ से जाने के साथ साथ भगवान के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाते हुए चले जाएं।
भगवान से रिश्ता बनाना कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, केवल परलोक की तैयारियां भर नहीं है, मरने के बाद मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, बल्कि इसी जीवन में सुख और शांति से ओतप्रोत होने का रास्ता है। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हम इसी जीवन में आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलते हुए सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग स्थापित कर सकते हैं।
अध्यात्म है नकद धर्म। मित्रों, आध्यात्मिक साधना नकद धर्म है,
यह उधार धर्म नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका की परिणाम बहुत देर से मिलता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका परिणाम तुरंत ही मिल जाता है।
विद्या पढ़ने का परिणाम संभव है कि देर से मिले, लेकिन जहर खाने का परिणाम तुरंत मिल जाता है।
गलत काम करने का परिणाम देर में मिल सकता है, लेकिन अपने दोष दुर्गुणों के परिणाम तुरंत मिल जाते हैं। इस तरीके से आध्यात्मिकता ऐसी प्रक्रिया का नाम है जो मनुष्यों को तुरंत लाभ प्रदान करती है, जिसका परिणाम तुरंत मिलता है। आज हमारे पास नकली अध्यात्म है और नकली अध्यात्म का परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ता है। बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और यह उम्मीद लगाए रखनी पड़ती है कि हमारी मौत आएगी और हम मरने के बाद भगवान के यहाँ जाएंगे और भगवान के यहाँ हमको इस तरह का फल मिलेगा, इस तरह का मोक्ष मिलेगा।
देखने का तरीका है बस। मित्रों,
सही बात यह है कि स्वर्ग के बारे में आपका यह ख्याल है कि यह कोई स्थान विशेष है, जिला विशेष है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वह यह कि किसी स्थान या जिला का नाम स्वर्ग नहीं है, बल्कि स्वर्ग आंखों से देखने का एक तरीका है और नरक भी आंखों से देखने का एक तरीका है।
फोटोग्राफर यह जानते हैं कि एक जगह खड़े होकर सामने से हम किसी आदमी का फोटोग्राफ लें तो नाक दिखाई पड़ेगी, आंखें दिखाई पड़ेंगी, चेहरा दिखाई पड़ेगा, दांत दिखाई पड़ेंगे, हंसता हुआ एक मनुष्य दिखाई पड़ेगा। अगर पीछे खड़े होकर उसी आदमी का फोटोग्राफ लें तब हमको केवल पीठ दिखाई पड़ेगी और पीछे वाले बाल दिखाई पड़ेंगे।
न उसमें आंखें होंगी, न उसमें दांत होंगे, न उसमें मुंह होगा और न कोई चेहरा होगा।
देखने वाला कहेगा कि लिया गया फोटोग्राफ अमुक आदमी का पिताजी का तो है ही नहीं।
इसमें न तो मूंछे हैं, न नाक है, न कान है और न ही चेहरा है, न माथा है।
हाँ साहब,
उसका चेहरा भी नहीं है, माथा भी नहीं है, लेकिन उसका चेहरा माथा न हो ऐसी बात नहीं है। चेहरा माथा तो है, पिताजी का ही है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि उनका फोटोग्राफ सामने से नहीं लिया गया है, वरन पीछे से लिया गया है।
बदला जाए दृष्टिकोण यदि। साथियों,
दुनिया इसी प्रकार की है, जीवन इसी प्रकार का है, हमारी परिस्थितियां और समस्याएं ठीक इसी प्रकार की हैं। स्वयं को देखने का तौर तरीका जब हम उल्टा कर देते हैं तब हमको बहुत कमी मालूम होती है और अपने जीवन में बड़े अभाव मालूम होते हैं। जैसे एक आदमी था, वह यह कह रहा था कि यह अभागा गुलाब ऐसी परिस्थितियों में पैदा हुआ कि उसके भाग्य फूट गए, यह कांटों में पैदा हुआ, जाने यह अपने कर्म में क्या लिखा कर लाया था कि जहां भी इसका जन्म हुआ कांटे ही कांटे, जहां कहीं भी इसको डालो कांटों में ही पैदा हुआ है।
दूसरा आदमी कहने लगा, अरे भाई,
यह कांटे भी कैसे भाग्यवान कांटे हैं कि गुलाब के साथ साथ पैदा हुए हैं, कांटों के साथ उगे हैं, यह कांटे कितने सौभाग्यवान और भाग्यशाली है कि गुलाब के साथ में जुड़े हुए हैं। जीवन के बारे में भी यही देखने का ढंग और तरीका है। जब हम उल्टे तरीके से अपने जीवन की समस्याओं को देखना शुरू करते हैं तो हमको अपना सारा जीवन अभाव में डूबा हुआ, कठिनाइयों, संकटों, आशंकाओं से डूबा हुआ तथा भार से दबा हुआ मालूम होता है। लेकिन जब हम जीवन को एक सुलझे हुए एवं सही दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारे बराबर सुखी, समृद्ध और समुन्नत और कौन है, कहाँ है सुख।
मित्रों,
जब हम अपने से पिछड़े एवं गुजरे हुए लोगों की ओर आंख उठाकर देखते हैं तो मालूम होता है कि हम हजारों, लाखों, करोड़ों मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा सुखी हैं। नीचे की ओर जब हम देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे सुखों में अभाव नहीं, हमारी संपत्तियों में अभाव नहीं, हमारी शांति में अभाव नहीं है।
लेकिन यदि हम आसमान की ओर आंख उठाकर देखते चले जाएंगे तो हमको बहुत मुसीबत मालूम पड़ेगी।
जब हम देखेंगे कि हमारा बड़ा वाला जो ऑफिसर है वह 2000 रुपया महीना पाता है और हमको 550 रुपया मिलता है, फिर हमको बड़ा क्लेश, बड़ा द्वेष, बड़ी ईर्ष्या, बड़ी जलन होगी और हाहाकार होगा कि 2000 पाने वाला बड़ी शान से रहता है, उसके पास इतना बढ़िया मकान है, इतने सारे नौकर चाकर हैं, उसके पास मोटर है और हम साइकिल से गुजारा करते हैं, छोटी वाली कोठरी में रहते हैं जिसके कारण हमारा जीवन दहखों में डूबा हुआ है। यदि हम कभी यह देख पाएं कि हमारी अपेक्षा कितने ज्यादा दहकी मनुष्य इस संसार में भरे पड़े हैं, जो बेचारे लंबे समय तक काम करते रहते हैं, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं और पसीना बहाते रहते हैं,
किसी दिन रोटी मिल जाती है और किसी दिन नहीं मिल पाती,
उनके साथ यदि हम अपना मुकाबला करने लगे तो मालूम पड़ेगा कि हमारे सुखों का कोई ठिकाना नहीं है, हम बहुत सुखी हैं।
सुख की सही परिभाषा। मित्रों,
सुख उन वस्तुओं में नहीं है, केवल देखने के भ्रम का ही नाम सुख है।
लोगों का ख्याल है कि दुनिया के पास सामान होता है, संपत्तियां होती हैं, अर्थात संपत्ति वाले ही सुखी होते हैं, पर वस्तुतः यह ख्याल गलत है। मित्रों,
मेरा संपत्ति वालों से मिलना जुलना रहा है।
मैंने देखा कि संपत्तिवान व्यक्ति सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा कहीं ज्यादा दुखी और संतापयुक्त पाए जाते हैं।
हमको बाहर से मालूम पड़ता है कि ये लोग सुखी हैं और हम उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। यदि यह हमें सीधे मिल जाती तो हम भी इन्हीं के तरीके से सुखी रहते,
लेकिन यदि उनका जी खोलकर देखा जाए, मन को चीर कर देखा जाए, तो मालूम होगा कि सामान्य नागरिकों की अपेक्षा वे ज्यादा दुखी हैं। फोर्ड की अंतिम इच्छा।
हेनरी फोर्ड मरने लगा तो उसने अपनी डायरी में एक वृतांत लिखा कि मैं जब अपनी फैक्ट्री में कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को मोटी मोटी रोटियां खाते हुए और रात को नाचते हुए देखता हूँ, तब मुझे डाह होता है, ईर्ष्या होती है कि मैं हेनरी फोर्ड संसार का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ। हमारी फैक्ट्री के मजदूरों को बेखबर नींद आती है, जबकि मुझे मुद्दतों से कभी नींद नहीं आई और खाना हजम नहीं हुआ।
उसने लिखा है कि हे भगवान,
जब मेरी मौत आए और मुझे दूसरा जन्म मिले, तब मैं चाहूंगा कि इसी फैक्ट्री के मजदूरों के साथ मुझे काम करने का मौका मिल जाए, ताकि मैं लोहा काटता रहूं, खर्रा चलाता रहूं, हथौड़ा चलाता रहूं, जिससे मेरा पेट ठीक से काम करता रहे और ठीक से नींद आती रहे। मजदूर समझते थे कि हेनरी फोर्ड बड़ा अमीर और सुखी है, जबकि हेनरी फोर्ड समझता था कि फैक्ट्री में काम करने वाले ये मजदूर बहुत सुखी हैं। पता नहीं कौन सुखी है और कौन दहकी है। जहां तक मैं समझ पाया हूं कि ये मनुष्य की सोच है जो मनुष्यों को सुखी और दहकी बनाती है।
एक उदाहरण। मित्रों, एक मल्लाह था, एक बार उसका बेटा खो गया। वह एक जहाज पर सवार थे और एक बड़ी भारी नाव को खेते हुए चले आ रहे थे। थोड़ी देर बाद एक तूफान आया और जहाज डगमगाने लगा।
मल्लाह ने अपने बेटे से कहा कि ऊपर जा और अपने पाल को ऊपर ठीक से बांध आओ। पाल को और पतवार को ठीक से बांध दिया जाए तो हवा के रुख में कमी हो जाएगी और हमारी नाव डगमगाने से बच जाएगी। बेटा रस्सी के सहारे बांस पर चढ़ता हुआ ऊपर गया और पाल को, पतवार को ठीक तरह से बांध दिया।
उसने देखा कि चारों ओर समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। तूफान आ रहा था। उसने देखा कि जोर जोर की हवा आ रही थी। चारों तरफ साए साए हो रही थी और अंधेरा बढ़ता हुआ घिरता जा रहा था। मल्लाह का छोकरा ऊपर से चिल्लाया कि पिताजी, देखिए मेरी मौत आ गई।
देखिए, दुनिया में प्रलय आने वाली है।
घटाएं उमड़ती घुमड़ती चली आ रही हैं।
आंधियां वेग से उठती हुई चली आ रही हैं। देखिए, समुद्र में लहरें कितनी जोर से उठती हुई चली आ रही हैं।
ये लहरें हमारे जहाज को निगल जाएंगी। बूढ़ा बाप हुक्का पी रहा था।
उसने कहा कि बेटे, नजर नीचे की ओर रख और चुपचाप नीचे की ओर उतरता हुआ चला आ।
लड़के ने न आसमान की ओर देखा, न बादलों को देखा, न उसने नाव को देखा और न आदमियों को देखा।
उसने बस नीचे की ओर नजर रखी और चुपचाप सीढ़ियों पर पांव रखता हुआ नीचे आ गया।
बूढ़े मल्लाह ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा कि अपने से ऊपर देखने की महत्वाकांक्षा रखने वाले दिन रात जलते रहते हैं। लोकेशना वाले, वित्तेशना वाले, पुत्रेशना वाले दिन रात जलते रहते हैं।
कामनाएं असीम और अपार हैं। ऐसे लोगों को क्या शांति मिलने वाली है? नहीं, वे निरंतर अशांति की आग में जलते रहते हैं और जलते रहेंगे।
मनुष्य का जीवन प्रगतिशील एवं उन्नतिशील होना चाहिए, लेकिन अशांत और विक्षुब्ध नहीं। पांच गुण साधिए तो सही। मित्रों,
यह दोनों चीजें एक समान मालूम होती हैं, परंतु इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इन दोनों में जीवन की उन्नति करना एक बात है और प्रगति करना एक बात है। इसके लिए आदमी को धैर्य की जरूरत है, साहस की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है, संतुलन और मुस्कराहट की जरूरत है। इन पांच चीजों के सहारे उन्नति के द्वार खुलते हुए चले जाते हैं।
छोटे छोटे आदमी, नाचीज आदमी इन्हीं के सहारे आगे बढ़े हैं।
उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक उन्नतियां प्राप्त की है, लेकिन उनके संबंध और सहारे वे सद्गुण रहे हैं, जिन्हें हम संतोष कहते हैं, जिनको हम उत्साह कहते हैं, जिनको हम श्रम कहते हैं, जिनको हम परिश्रम कहते हैं। इन चीजों के सहारे मनुष्यों ने तरक्की की। जिन लोगों ने आकांक्षा की और अपने आप को आग में जलाना शुरू किया और जिन्होंने इस बात में भी गिला नहीं किया कि हमको यह नहीं मिला, हम मर जाएंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, वही आगे बढ़े हैं।
जीवन जीने की प्रणाली है अध्यात्म। मित्रों, जो आदमी घबराते रहे, उन्होंने उन्नति के लिए अपना संपूर्ण मानसिक संतुलन खो दिया। वस्तुएं भी प्राप्त न कर सके और अपनी गिरह की शांति भी खो बैठे।
इसलिए अध्यात्म जीवन जीने की प्रणाली है, जीवन जीने की प्रक्रिया है। मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को जब हम अपने जीवन में समाहित कर लेते हैं, तब हमारे चारों ओर स्वर्ग सुख ही बिखरा हुआ पड़ा मिलेगा। तस्वीर खींचने का सही ढंग हमको मालूम हो तो हम दुनिया की बेहतरीन तस्वीर खींच सकते हैं और अपने आप की भी तस्वीर खींच सकते हैं। हमारी भी तस्वीर बेहतरीन है, लेकिन यदि हमने दुनिया की खराब तस्वीर देखना शुरू किया और अपना कैमरा गलत जगह पर लगा दिया, तब हमको क्या चीज मिलने वाली है? गलत तस्वीर मिलने वाली है।
आप उसी कैमरे से उसी मनुष्य की फोटो खींचिए, उसमें केवल उसका सिर आएगा, उसके पैर आएंगे।
मालूम पड़ेगा कि लोहे की कोई कील खड़ी हुई है।
उसी आदमी को नीचे जमीन पर बैठा करके आप उसका फोटोग्राफ खींचिए, तो मालूम पड़ेगा कि कोई लंबा लंबा भूत खड़ा है, अर्थात कैमरे का लेंस फेल। जो फोटो सामने खड़ा हो करके खींचा गया, वह खूबसूरत आया, अर्थात कैमरे का लेंस सही है।
जो पीठ पीछे से खींचा गया वह बेकार। आपको लेना है दुनिया का फोटो।
मित्रों, दुनिया के जीवन का आपको फोटोग्राफ लेना है और उसके आधार पर ही अपनी शांति, समृद्धि, सुख और सुविधा का मूल्यांकन करना है।
आध्यात्मिकता एक दर्शन है, आध्यात्मिकता सोचने की एक प्रणाली है, विचार करने की एक पद्धति है कि हम किस तरीके से विचार करें। हम अपनी समस्याओं के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने कुटुंब, अपने पुरुषार्थ के बारे में, अपनी व्यवस्था तरक्की के बारे में और अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में किस तरीके से विचार करें।
यदि हमारा विचार करने का तरीका या क्रम सही हो जाए तो
देखने के लिए जो हमारी आंखें हैं, इन आंखों का लेंस यदि बदल दिया जाए और उस लेंस से हम केवल वह चीजें देखना शुरू करें जो देखने लायक हैं, तो हमको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई पड़ेंगी। हमारे पड़ोस में बहुत बढ़िया ब्लॉक बनाने वाला एक व्यक्ति रहता है। हम उससे ब्लॉक और तस्वीरें बनवाते रहते हैं। उसके पास कई तरह के रंगीन कैमरे हैं। वह जो तस्वीर निकालता है उसमें तीनों चारों रंग मिले हुए होते हैं। गायत्री माता की जो तस्वीर हमारे यहाँ छपती और बिकती है उसी के द्वारा बनाई गई है। जब उससे ब्लॉक बनवाए गए तो उसने ऐसा बना दिया कि उस कैमरे में जो पीला रंग था उसे अलग किया।
पीले रंग की प्लेट उसने अलग बनाई।
लाल रंग के जो धब्बे जहाँ कहीं थे उसके ब्लॉक अलग से निकाल दिए। नीले रंग की धारियां उस कैमरे से अलग निकाल ली और उसका अलग ब्लॉक बना दिया। तीन रंग थे सो तीन रंग के ब्लॉक उसने अलग अलग बना दिए। अब तीनों ब्लॉकों को जब हम सम्मिश्रित करके छपाई करते हैं तो ऐसी रंगीन तस्वीर बन जाती है जैसे कि आप गायत्री माता की खूबसूरत तस्वीर देखते हैं।
पहले अलग अलग प्लेटें थी और अलग अलग तस्वीरें थी।
सब में सब कुछ है।
मित्रों,
मनुष्यों के भीतर बुराइयां भी भरी पड़ी हैं, दुष्टताएं भी भरी पड़ी हैं, कमियां और मूर्खताएं भी भरी पड़ी हैं।
लेकिन दुनिया में कोई मनुष्य इस तरह का नहीं हुआ जिसमें केवल कमियां ही कमियां, केवल दोष ही दोष, केवल दुर्गुण ही दुर्गुण हो।
ऐसा इंसान आज तक देखा नहीं गया और ऐसा इंसान भी आज तक देखा नहीं गया जिसमें दोष ही दोष हो और कोई अच्छाई न हो। हर मनुष्य के भीतर अच्छाई की मात्रा भी रहती है। कसाई के भीतर भी काफी मात्रा में अच्छाई होती है। वह भी अपने बाल बच्चों को प्यार किया करता है। डाकू के भीतर भी एक विशेषता होती है और वह है उसका साहस। डकैती के कारण उसको इस लोक में दंड मिलता है, उसको जेल में जाना पड़ता है। लंबी लंबी सजाएं हो जाती हैं, लेकिन अपने साहस के आधार पर उसका नाम भी हो जाता है, यश भी हो जाता है। वह इसके बल पर पैसा भी कमा लाता है। रात को जंगलों में निकलते हुए जब हमको भय लगता है, भूत का भय, बिच्छू का भय, सांप का भय, शेर का भय, भेड़िए का भय लगता है, तब वह अपने कंधे पर बंदूक रखे हुए और जूता पहने हुए अकेला चरा मरा करता हुआ बियावान और साए साए करते हुए जंगल में चलता रहता है। यही उसकी विशेषता है।
दृष्टिकोण हमारा क्या है? मित्रों,
विशेषताओं से भरा हुआ हर मानव बुराइयों से भरा हुआ हर मानव हमारे देखने के लेंस के ऊपर, हमारी आंखों की दृष्टि के ऊपर निर्भर है। अगर हमारे देखने की आंखें सही हों, तो हम उसका वह फोटो खींच सकते हैं जैसे कि हमारे पड़ोस में रहने वाला फोटोग्राफर ब्लॉक बनाते समय खींचता है।
वह पीले रंग को अलग निकाल देता है, लाल रंग को अलग निकाल देता है, काले रंग को अलग निकाल देता है।
कैमरे वाला यदि पीले रंग को अलग निकाल सकता है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि मनुष्यों के भीतर जो अच्छाइयां हैं, उन्हें हम देखना शुरू करें और अच्छाइयों का संवर्धन करने के लिए, अच्छाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए और प्रशंसा करने के लिए अपना मुंह खोलें, दूसरे लोगों की अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। आप कहेंगे कि तब बुराइयों का क्या होगा? क्या बुराइयों के साथ संघर्ष नहीं किया जाएगा? बुराइयों को मिटाया या उनसे लड़ा नहीं जाएगा? हाँ बेटे, बुराइयों से लड़ा जाएगा, लेकिन बुराइयों से लड़ने के भी बहुत से तरीके हैं। बुराइयों से लड़ने का एक तरीका यह है जिसमें हम गाली गलौज किया करते हैं, निंदा किया करते हैं, मारपीट किया करते हैं, लांछित किया करते हैं,
अपमानित करने के बाद उसको झूठा बताते हुए चले जाते हैं, दुष्ट बनाते हुए चले जाते हैं, निर्लज बनाते हुए चले जाते हैं।
बुराइयों से लड़ने का एक तरीका यह है।
डॉक्टर कसाई थोड़े ही हैं।
दूसरा एक तरीका और है जिसके द्वारा हम बुराइयों से लड़ते हैं। इससे सुधारने के लिए बड़े से बड़े और कड़े से कड़े काम किए जा सकते हैं। डॉक्टर अपना तेज वाला चाकू ले आता है। यद्यपि वह मोहब्बत से भरा हुआ होता है, किंतु कभी वह पेट पर चाकू चलाता है, कभी कान पर चाकू चलाता है और कभी सिर पर चाकू चलाता है। जगह जगह पर चाकू चलते रहते हैं और वह ऑपरेशन करता रहता है। इसलिए डॉक्टर के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाता, डॉक्टर को सजा नहीं दी जाती। पेट में छुरा घोंप देने वाले, खून निकाल देने वाले मनुष्य को 10 साल की सजा होती है, वहीं दूसरी ओर उसी पेट में छुरा घोंप देने वाले, खून निकाल लेने वाले डॉक्टर को तरक्की दी जाती है। उसे अच्छी जगह भेज दिया जाता है और प्रशंसा की जाती है। नीयत के आधार पर लोगों को बदनाम भी किया जा सकता है और अच्छी नीयत के आधार पर बदनाम लोगों को सुधारा भी जा सकता है। यह दृष्टिकोण ही जो है, तो बदल जाए, तो हमारे जीवन में तुरंत न जाने क्या से क्या हो जाए।
आगरा के सेठ जी। आगरा में बेलनरगंज नामक एक मोहल्ला है। वहाँ एक बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति थे जिन्हें 15 दिन से नींद आनी बंद हो गई।
इतना ही नहीं, कुछ ऐसी भी शिकायत हो गई कि दिमाग की नसें फटने लगी और यह मालूम पड़ने लगा कि उनकी मौत हो जाएगी।
आंखें बिल्कुल लाल हो गई, बाहर को निकलने लगी,
पलकें सूज गई थीं।
15 दिनों तक नींद न आने के बाद उनका बुरा हाल हो गया था।
किसी ने उनसे कहा कि मथुरा में एक आचार्य जी रहते हैं, उनके पास जाने से कई आदमी अच्छे हो जाते हैं।
एक महिला प्रिंसिपल थी जिनके पतिदेव तहसीलदार थे, उनका भी बुरा हाल था।
जब देखो जोर जोर से रोया करती थी, जैसे सियार हुड़की देकर रोता है ऐसा रोया करती थी। किसी ने उनसे कह दिया कि आचार्य जी के पास जाओ, वह इलाज कर देते हैं।
जिस दिन वह महिला आई थी उसी दिन मैंने उसके सिर के ऊपर पट्टी बांध दी।
तखत पर बैठी थी, वहीं पर बैठे बैठे सो गई।
ऐसे ही किसी ने उनको, जिनको नींद नहीं आती थी, किससे कहानी सुना दिए कि इसका इलाज आचार्य जी को आता है।
उनको लेकर मेरे पास आए और कहा कि इनके सिर की नसें फटी जा रही हैं, यदि कोई उपाय कर सकते हो तो कीजिए। मैंने कहा कि इनको अच्छा भी किया जा सकता है और उपाय भी किया जा सकता है।
फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपको शिकायत क्या है,
यह सब आपको कैसे हुआ?
उनके साथ जो लोग आए थे उन सबको दूसरी जगह भेज दिया।
मैंने कहा कि अब बताइए क्या कारण था। उन्होंने कहा कि कारण तो बहुत छोटा सा था और बड़ा भी था। मैंने कहा आखिर हुआ क्या?
उन्होंने कहा कि हुआ यह कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने छापा मारा, हमारे पास 2 बही खाते थे।
मुनीम नाराज हो गया था, उसने ऑफिसरों को जाकर बता दिया कि इनके पास 2 बही खाते रहते हैं, कहाँ रखे हुए हैं यह भी बता दिया।
अपने साथ इनकम टैक्स ऑफिसर को ले आया,
उन्होंने छापा मारा और हमारे 2 बही खाते जब्त कर लिए। 2 बही खातों को पुलिस ले गई,
हमारे ऊपर अपराधी का केस चलाया गया।
अभी हम जमानत पर छूटे हुए हैं। हमको भय है कि अब न जाने क्या होने वाला है और न जाने क्या हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि आप मेरे पास बैठ जाइए, अब हम थोड़ी देर विचार कर लें। ऐसे हुआ उनका इलाज।
मित्रों,
मैंने उनसे कहा कि आपको दवाई तो मैं कल दूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि आपको इस मुकदमे की जड़ से ही बचा दूं। तो वह हंसने लगा और पूछने लगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वास्तव में बड़ा लंबा किस्सा है, पर मैंने उनसे कहा कि आप बैठिए तो सही। मैं उससे बात करने लगा और कहा कि आप यह बताइए कि उस असली बही खाते में और नकली बही खाते में कितने रुपये का चक्कर है।
मैंने कहा कि यदि आपको इनकम टैक्स देना पड़े, पेनल्टी देनी पड़े, सजा भुगतनी पड़े, तो आपको कितना नुकसान भुगतना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया जो हमने 3-4 वर्षों से चुरा रखा था, एक तो वह और लगभग दूनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, कुल मिलाकर 20 लाख रुपया देना पड़ सकता है। मैंने कहा कि यह तो बड़ी लंबी रकम है, विचार कीजिए 20 लाख रुपया किसे कहते हैं।
20 लाख देना पड़ा तो आपको मुश्किल हो जाएगी, मैंने सहानुभूति प्रकट की।
फिर मैंने कहा कि अच्छा एक बात तो बताइए कि आपके पास क्या क्या सामान है, आपकी कितनी संपत्ति और कितनी जायदाद है। मैं कागज पेंसिल लेकर बैठ गया और पूछा कि आप अपनी फैक्ट्री के, मशीनों के और अपनी जायदाद के दाम बताइए, आप उसका भी दाम बताइए जो आपका रुपया बाहर और बैंक में जमा था।
घर में जो जेवर थे उनके भी दाम बताइए, करीब 50 लाख रुपये की उनकी सारी संपत्ति थी।
फिर मैंने उनसे कहा कि अगर 20 लाख रुपये को 50 लाख रुपये में से निकाल दिया जाए तो कितना बच सकता है।
उन्होंने कहा कि 30 लाख।
मैंने कहा मेरे पास तो 30 पैसे भी नहीं है।
मान लीजिए गवर्नमेंट 20 लाख रुपये ले भी जाए तो भी 30 लाख का सामान तो बच ही जाएगा ना।
बुड्ढा बहुत देर तक सोचता रहा कि 30 लाख किसे कहते हैं।
30 लाख रुपये की 1 रुपये सैकड़े से 30,000 रुपया महीना ब्याज आएगा।
मैंने उनसे कहा कि आपको 20 लाख जुर्माना हो जाए और आप छूट जाया तब मुझे बुला लेना, आपका जो बचा हुआ सामान है उसे बिकवाकर मैं आपको पैसे दिलवा दूंगा और आप घर बैठे आराम किया कीजिएगा और 30,000 रुपये महीने की ब्याज भाड़े की आमदनी आपको आती रहेगी। उसकी समझ में आ गया कि 30,000 रुपया महीना तो बहुत होता है। मैंने पूछा कि आपका महीने का खर्चा कितना है, तो बोला कि यही कोई 5-6 हज़ार रुपये महीने से हम अपना खर्च चला लेते हैं। मैंने कहा कि 30 लाख रुपये की जो 30,000 रुपये महीने ब्याज आती है उसमें से 5,000 रुपया महीना खर्च का निकाल लिया जाए तो कितना बच जाया करेगा। उन्होंने कहा कि तब तो हमारा 25,000 रुपया बच जाया करेगा और साल भर में 3 लाख हो जाया करेगा। मैंने कहा कि अभी तो आपको 10-20 साल और जीना है।
3 लाख रुपया जो गवर्नमेंट ले जाएगी वह कितने वर्ष में पूरा हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि 7 साल में। मैंने कहा कि 7 साल में क्या बनता बिगड़ता है, समझ लेना 7 साल कमाया ही नहीं था। बस बात समझ में आ गई, जादू हो गया। वह हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, बात तो आपने ठीक बताई, सारे का सारा जुर्माने में चला जाए तो भी मेरा क्या बनता बिगड़ता है। मैंने कहा कि हंसिए और चलिए खाना खाइए। फिर मैं उन्हें माताजी के पास ले गया और पूछा कि आप रोटी कैसी खाते हैं, पतली खाते हैं क्या।
माताजी के हाथ की ऐसी ऐसी मोटी रोटी खाया कीजिए, आप मोटे हो जाएंगे।
वह गुरु आदमी था, हंसी की बात नहीं मजाक की बात थी। शाम को वह आया था और रात भर सोया। सवेरा हो गया तो मैंने कहा कि कुछ और इलाज कराना है क्या, कुछ और जप तप कराना है क्या। उन्होंने कहा कि जो जप तप कराना था वह तो हो गया। मैंने कहा कि घर जाकर राम का नाम लीजिए,
जाइए अब आप अच्छे हो गए।
उसके बाद में घर वालों की चिट्ठी आई,
उन्होंने लिखा कि गुरुजी
आपने जादू कर दिया।
उसके बाद से लाला जी की तबीयत बिल्कुल अच्छी हो गई,
वे रात भर सोया करते हैं, मौज किया करते हैं।
आध्यात्मिकता का अंतिम परिणाम है स्वर्ग। मित्रों
यही है देखने का ढंग और तरीका, देखने का यही ढंग और तरीका यदि हमारा बदल दिया जाए और सुरक्षित कर दिया जाए तो हमारा यह जीवनक्रम आनंद और उल्लास से भरा हुआ होगा। लोग स्वर्ग के और मुक्ति के ख्वाब देखते रहते हैं और सोचते हैं कि मरने के बाद हमको स्वर्ग मिल जाएगा। मरने के बाद स्वर्ग देखने की आवश्यकता प्रायः सभी धर्मों में पाई जाती है। स्वर्ग के बारे में जैसा बताया गया है, यदि उसी तरह का स्वर्ग हो तो कम से कम मेरे जैसा आदमी वहां जाना नापसंद करेगा। मुसलमानों के स्वर्ग के बारे में मैंने पढ़ा है और मुझे बताया गया है कि मुसलमान इस तरह के स्वर्ग में चले जाते हैं। उसमें हर मुसलमान को शराब पीने की नहर मिलती है, जब भी पीना हो, जब भी नहाना हो शराब, जब भी कुल्ला करना हो शराब, हर जगह शराब की नहरें बहती हैं, जितनी चाहो शराब पियो।
ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए।
मुसलमानों की जन्नत में 70 हूर और 72 गुलाम हर आदमी को मिल जाते हैं।
यह हूर कौन सी आई, यह तो अभी आई थी।
1 महीने बहुत हो गया, अब इसे हटा दो।
दूसरी हूर आई,
यह हूर हमारी सेवा करेगी।
अगले महीने तक इस हूर से बोर हो जाएंगे, तब अगले महीने इस हूर को भगा देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, तो फिर दूसरी हूर आएगी। बस हर हूर के साथ आराम कीजिए, आपको 70 हूर और 72 गुलाम मिलेंगे। एक गुलाम पैर दबाए, एक गुलाम कपड़ा धोकर लाए, एक गुलाम सिर में तेल डाले, एक गुलाम मालिश करे।
इस तरह से जन्नत में मुझे भेज दिया जाए तो मित्रों
मैं मर जाऊंगा। मेरी सांस घुट जाएगी।
रेलगाड़ी या मोटर में सफर करने के दौरान यदि कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो मुझे सिर बाहर निकालना पड़ता है, नाक बंद करनी पड़ती है। फिर जहां सब लोग शराब पी रहे होंगे, मुंह से बदबू आ रही होगी, तो मैं क्या करूंगा उस जन्नत में जा करके? जब हुरें आएंगी तो मैं कहूंगा कि तुमने गायत्री का अनुष्ठान किया था या नहीं। वह कहेगी कि आचार्य जी,
हम तो आपको गाना सुनाने, नाचने गाने आई हूँ।
तो मैं कहूंगा कि ए हुर, तुम मेरी बच्चियों बेटियों के बराबर हो, जाओ स्कूल में पढ़ना शुरू करो और मजे करो। वह कहेगी कि हमको पढ़ना कहाँ आता है,
हमको पढ़ना कहाँ सिखाया गया, हमको गायत्री का अनुष्ठान कहाँ सिखाया गया,
हम तो नाचने गाने वाली निकम्मी और बेकार औरतें हैं।
क्या इसी का नाम है स्वर्ग? मित्रों,
हिंदुओं के स्वर्ग के बारे में जैसा कि मैंने पढ़ रखा है, उसके मुताबिक हिंदुओं का स्वर्ग भी लगभग उसी तरह का है। उसमें इंद्र देवता के यहाँ अखाड़ा लगा रहता है, बस सवेरे से संगीत शुरू होता है और 11 बजे रात तक नाच होता रहता है।
ऐसा स्वर्ग देखने की मुझे जरूरत है क्या?
जहाँ खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हों, सवारियां मिलती हों, मोटरें मिलती हों, तो मुझे स्वर्ग जाने की आवश्यकता है क्या?
मित्रों, फिर तो मैं अशोका होटल चला जाऊंगा, नटराज होटल चला जाऊंगा और वहां मौज किया करूंगा। 200 रुपये रोज का एक फ्लैट ले लूंगा, खूब खर्च किया करूंगा।
कहीं से पैसे कमाकर माल मारकर लाऊंगा और यह स्वर्ग तो मुझे इसी जिंदगी में मिल सकता है, फिर मरने का इंतजार क्यों किया जाए?
यदि इसी का नाम स्वर्ग है, खाने पीने की सुविधाओं का नाम स्वर्ग, पहनने उड़ने की सुविधाओं का नाम स्वर्ग, नाच रंग देखने की सुविधाओं का नाम स्वर्ग है, तो कम से कम मेरे जैसा इंसान, जिसने केवल परिश्रम को प्यार किया, जिसको पसीना बहाए बिना नींद नहीं आती, चैन नहीं आता,
जो आदमी सेवा करने और धार्मिक रीति के बिना जीवित नहीं रह सकता, मैंने ऐसा मन पाया है। फिर मैं ऐसे स्वर्ग में जाकर क्या करूंगा? मुझे वहां से भागना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि कृपा करके मुझे यहां से रिहा कर दीजिए। आप स्वर्ग में क्यों नहीं रहना चाहते? मैं कहूंगा कि मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, मुझे तो उन गरीबों और पिछड़े हुए लोगों के साथ भेज दीजिए जिनके साथ मुझे सेवा करनी है।
मानव मात्र का कल्याण ही लक्ष्य। मित्रों, भगवान बुद्ध से एक बार पूछा गया कि आपको तो मरने के बाद स्वर्ग मिलने वाला है।
उन्होंने कहा, नहीं, मुझे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। तो फिर आपको क्या मिलने वाला है?
आप कब स्वर्ग जाएंगे? उन्होंने कहा कि स्वर्ग जाने वालों में मैं आखिरी इंसान होऊंगा, जबकि सारे के सारे मनुष्यों में से प्रत्येक को स्वर्ग मिल जाएगा। हर आदमी स्वर्ग को चला जाएगा, हर आदमी शांति प्राप्त कर लेगा, तब मैं अंतिम मनुष्य उस क्यू में लगा हुआ होऊंगा, जो मैं स्वर्ग की ख्वाहिश किया करूंगा। उससे पहले मैं हर आदमी को बढ़ाता हुआ, अपना नंबर काटता हुआ, दूसरों को प्रोत्साहन देता हुआ और आगे बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा, ताकि लोग स्वर्ग के अधिकारी हो जाएं। मित्रों,
बुद्ध की मनोभूमि ऋषियों की मनोभूमि थी, जिसमें उन्होंने कहा है,
न त्वह काम्ये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम् काम्ये दुःख तप्ताना कुंती ने मांगा यह वरदान।
अर्थात प्राणियों का आरत और दैख निवारण करने के लिए यदि हमको कुछ मौका मिल जाता है तो हमारे लिए यही वरदान है और यही हमारा सौभाग्य है।
कुंती से भगवान कृष्ण ने पूछा कि मैं तो भगवान हूँ ही, अब मैं जा रहा हूँ, तू वरदान मांग ले। कुंती ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप भगवान हैं।
मुझे तो आप एक ही वरदान दीजिए कि मैं जहाँ जहाँ जन्म लूँ, हमेशा कष्ट का जीवन जीऊँ, गरीबी का, छोटा और असुविधाओं का जीवन जीऊँ, ताकि मैं दूसरे लोगों की कठिनाइयों के बारे में समझ सकूँ और मुझे यह ज्ञान और भान बना रहे कि दुनिया में गरीबी कैसी होती है,
कष्ट, दुख और असुविधाएं कैसी होती हैं। उन असुविधाओं को, उनकी पीड़ाओं को बढ़ाने के लिए मैं एक कदम आगे बढ़ा सकूं।
कोई लोक नहीं है स्वर्ग।
मित्रों,
स्वर्ग मनुष्यों के देखने के ढंग और तरीकों में है। स्वर्ग किसी लोक का नाम नहीं है। स्वर्ग कोई जगह नहीं है जहां मनुष्य रहते हों। कम से कम सौर मंडल का पता लगा लिया गया है,
चंद्रमा के बारे में जानकारी मिल गई है।
वह कभी कभी बहुत गर्म हो जाता है, दिन में इतना गर्म हो जाता है कि वहां लोहे की धातु रख दी जाए तो पिघल जाएगी, और रात में इतना ठंडा हो जाता है कि यदि कोई चीज रख दी जाए तो वह बर्फ बन करके जम जाएगी।
ऐसा है गरीब चंद्रमा, जहां न हवा है न पानी है। वहां चंद्रलोक में यदि आपको भेज दिया जाए, तब आप कहेंगे कि गुरुजी यहां से तो वापस बुला लीजिए।
जो लोग वहां पता लगाकर आए हैं, उनकी यह हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां जा करके देखें।
यदि आपको चंद्रलोक भेज दिया जाए तो कहेंगे कि आपको रास्ता बताना पड़ेगा।
इसी तरह बृहस्पति लोक भेज दिया जाए, शुक्र लोक भेज दिया जाए, जहां यह पता लगा लिया गया है कि उसमें कोयले की कार्बन गैस भरी हुई है, इसमें दम घुट सकता है।
यदि आपको वहां भेज दिया जाए तो आप वहां एक मिनट भी नहीं रहेंगे, कार्बन गैस आपको मार डालेगी। नजरिया बदलिए मित्रों,
कहीं कोई ऐसा लोक है जहां स्वर्ग रहता है, मैं नहीं जानता कि कहीं है या नहीं,
लेकिन मित्रों मैंने जिस स्वर्ग को देखा है, मैं चाहता हूं कि आपको भी वह स्वर्ग दिखाऊं।
भगवान के पास आदिकाल से ही आदमी को दो चीजें मिलती हैं,
उसमें से एक का नाम है स्वर्ग और एक का नाम है मुक्ति। स्वर्ग केवल देखने वाले तरीकों का नाम है।
आपका स्वर्ग अपने छोटे से घर और घरौंदे में निवास करता है। आप इस स्वर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। आप कृपा करके उन लोगों के एहसान देखना शुरू कीजिए जिनके बोझ से आपका शरीर लदा हुआ है। कृपा करके आप बूढ़ी माँ को एक दूसरी आंख से देखिए और यह देखिए कि यह दया की देवी और करुणा की देवी, जिसने हमें 9 महीने तक पेट में रखा और 9 महीने तक अपनी हड्डियां, अपना मांस और रक्त निचोड़ती रही, सारे का सारा तन मन निचोड़ निचोड़ कर हमारा एक पिंड बनाया, और यह पिंड जब जमीन पर आने के बाद असहाय था, तभी वह अपना खून सफेद दूध के रूप में बदल बदल कर पिलाती रही। कोई किसी को 85 cc खून का इंजेक्शन दे देता है तो जीवन भर यह एहसान जताता है कि आप मरने के लिए बैठे थे और हमने अपना 85 cc खून आपको बचाने के लिए दिया। एहसान का अनुभव करें।
लेकिन मित्रों,
जिसने हजारों सी खून दूध के रूप में पिला दिया, उस एहसान का क्या ठिकाना? कभी आपने उस माँ को उस एहसान की दृष्टि से देखा होता तो देवता को ढूंढने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। देवता आपके घर में बैठा हुआ है। शारदा और सरस्वती को पाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी।
सरस्वती आपके घर में बैठी हुई थी। लक्ष्मी देखने के लिए बंबई जाने की जरूरत नहीं थी।
घर में धर्मपत्नी के रूप में लक्ष्मी आती है, त्याग की देवी, तपस्या की देवी और भावनाओं की देवी बनी हुई। जहां हर आदमी मुआवजा चाहता है, हर आदमी कीमत चाहता है, वहीं आपकी धर्मपत्नी जो अपने पिता के घर को छोड़कर आए, भाई को, माँ को छोड़कर आए, वह त्याग और बलिदान की देवी आपके घर में बैठी हुई है। त्याग और बलिदान का देवता आपके घर में बैठा हुआ है। त्याग और बलिदान के देवता का नाम भगत सिंह है। त्याग और बलिदान के देवता का नाम दधीची है।
राजा हरिश्चंद्र हैं। होंगे हरिश्चंद्र। मैंने न हरिश्चंद्र को देखा न दधीची को देखा,
लेकिन मैंने अपनी औरत को देखा है जिसने दधीची के रूप में अपने जीवन का उत्सर्ग मनुष्यों के ऊपर कर दिया।
हर जगह होगा नरक ही नरक। मित्रों,
यदि आपकी आंखों में कृतज्ञता की यह भावना हो, तब आपको यह कहना न होगा कि आप गायत्री मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए जाया।
जो व्यक्ति औरत को लातों से मारे और वह बेचारी शर्म के मारे चिल्लाना चाहती हो, लेकिन मुंह में कपड़ा देकर सिस्क सिस्क कर रोए, ऐसे अनुष्ठान करने वालों तुम्हारे ऊपर धिक्कार है।
अगर कृतज्ञता की भावना तुम्हारे भीतर नहीं आई तो ऐसे अनुष्ठान करने वालों पर लानत है।
गायत्री माता को प्रसन्न करने के लिए चले थे। गायत्री माता से वरदान मांगने के लिए चले थे। गायत्री माता से ऐसे ही नीच और दुष्ट मनुष्य वरदान प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं क्या?
ऐसे पिशाच और आसक्त जहां कहीं भी जाएंगे, उनके लिए वहां नरक ही नरक का द्वार खुला हुआ है। घर में जाएंगे तो उनके लिए वहां नरक विद्यमान है। आकाश में जाएंगे तो उनके लिए नरक विद्यमान है।
स्वर्ग जाएंगे तो नरक, बाहर जाएंगे तो उनके लिए नरक विद्यमान है।
हर जगह उनके लिए नरक खुला हुआ पड़ा है। कृतज्ञता सभी के प्रति।
मित्रों, जिनकी आंखें रोज शैतान को देखती रहती हैं, दोष और दुर्गुणों को देखती रहती हैं,
जिनके भीतर कभी ये भाव ही उत्पन्न नहीं होते कि जीवन में त्याग और सेवा की भावना कितनी महत्वपूर्ण और कितनी महान है। कृतज्ञता के भाव जब तक मनुष्य के जीवन में न आए, स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता।
स्वर्ग अर्थात कृतज्ञता के भाव।
कृतज्ञता के भाव जब हमारी आंखों में आ जाते हैं, तब हमको छोटी छोटी चीजें देवता के रूप में दिखाई पड़ती हैं। दूसरे लोग हिंदुओं पर हंसा करते हैं और कहते हैं कि ये हैं हिंदू।
हिंदू क्या पूछते हैं? पीपल।
और क्या पूछते हैं? पत्थर। क्या पूछते हैं? कुत्ता, गधा, कुआं, घूरा, कूड़ा। और क्या पूछते हैं? चूल्हा, चक्की। तो क्या हम बेवकूफ हैं? नहीं, हम बेवकूफ नहीं हैं।
हम बुद्धिमानों में सभी से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।
जिस जानदार और बिना जान की किसी चीज ने हमारे ऊपर एहसान किए, हमारा मस्तक उनके चरणों में झुका रहता है।
चक्की बेजान है तो हो बेजान, हमें क्या लेना देना, लेकिन चक्की ने हमें आटा पीस पीस कर खिलाया।
अन्न को हम सीधे खा नहीं सकते थे, चबा नहीं सकते थे।
उस न चबाने लायक चीज को चक्की हमें पीस करके इस लायक बनाती रही कि वह हमारा खाद्य पदार्थ बन जाए और हम स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर सकें।
चक्की तू धन्य है। चक्की देवता नहीं है तो फिर और कौन देवता है?
जो हमारे काम आया,
जिसने बिना मूल्य के, बिना पारिश्रमिक लिए, बिना परिश्रम कराए अपना क्रम जारी रखा, उसका एहसान न माने, उसकी पूजा न करें, तो किसकी पूजा करें।
मित्रों, भले ही वह पत्थर हो, लेकिन उन इंसानों से यह पत्थर अच्छा है,
उन देवताओं से यह पत्थर अच्छा है जो निष्ठुर देवता बकरे खाने के बाद, भैंसे खाने के बाद भी इंसान की सहायता करने के लिए तैयार नहीं रहते। ऐसे दुष्ट, पिशाच और कसाई देवताओं की अपेक्षा वह देवता अच्छा है जो हमारे चक्की पीसने के काम आ जाता है। घूरा कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है।
किसी ने गंदगी एक स्थान पर इकट्ठी कर ली।
घूरे और कूड़े ने अपने आप को गला डाला। गला डालने के बाद अपने आप को खाद बना दिया और हमारे खेतों में जाने के बाद अन्न, चावल, मक्का और सब्जी उगाता है। हम घूरे की पूजा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। घूरा बेजान है, बेजान है तो रहे, चक्की बेजान है तो रहे, लेकिन हम तो बेजान नहीं हैं। हम में तो जान है। हर जानदार का केवल एक ही फर्ज है कि जिन लोगों के द्वारा उसने सहायता प्राप्त की, जिन लोगों की सेवाएं प्राप्त की, जिन लोगों की भावनाएं प्राप्त की और जिन लोगों का स्नेह प्राप्त किया, उन सबके प्रति कृतज्ञता के भाव रखें।
प्रतिध्वनि का सिद्धांत है। मित्रों, कृतज्ञता का भाव रखना औपचारिक रूप से नहीं हो सकता। जिसके प्रति कृतज्ञता का भाव है, स्वभावतया उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए और उसकी प्रतिध्वनि होनी ही चाहिए। ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है न।
जिस तरह हम कुएं में झांक कर देखते हैं और आवाज लगाते हैं तो उसमें से आवाज आती है,
ऐसी ही प्रतिध्वनि होनी चाहिए।
कुआं कहते हैं तो वह चिल्लाता है कुआं। यहाँ मथुरा में एक पोत्रा कुंड है जहाँ पंडे यजमानों को ले जाते हैं और उनसे कहलवाते हैं, यशोदा तेरा लाला जागे की सोवे। सोवे वाला जो अंतिम शब्द है, उस बड़े कुंड तालाब में से आवाज आती है सोवे। एक सेकंड में फर्क पड़ जाता है।
आप कह चुकेंगे कि सोवे, तो एक सेकंड बाद आवाज आएगी सोवे। यदि आप यूं कह दें कि यशोदा तेरा लाला सोवे की जागे, तो एक सेकंड बाद तालाब चिल्लाएगा जागे। जागे जागे की प्रतिध्वनि आती रहती है।
गुंबदों में से, कुएं में से, तालाब में से प्रतिध्वनि आती है।
सबको याद रखें मित्रों,
इस संसार में से भी प्रतिध्वनि आती है। कृतज्ञता के भाव जब हमारे अंतर्ग में जा करके इस गुंबद से टकराते हैं तो प्रतिध्वनि आती है और एक भाव, एक कल्पना, एक आकांक्षा उत्पन्न होती है। जिन लोगों ने हमारे साथ सहकार किया, जिन लोगों ने हमें अनुदान दिया, जिन लोगों ने हमारी सेवा की, उन लोगों के लिए क्या हमारे कुछ कर्तव्य नहीं है? क्या कोई फर्ज नहीं है?
क्या उनका बदला नहीं चुकाया जाना चाहिए? क्या उन फर्जों से मुक्ति प्राप्त नहीं की जानी चाहिए?
मनुष्य के मन में जिस दिन ये भाव उत्पन्न होते हैं, उस दिन चारों ओर देवता दिखाई पड़ते हैं। वह अध्यापक हमको दिखाई पड़ता है जिसने प्राइमरी स्कूल में हमको कमची से मार मार करके पढ़ाया था, जो रोज मुर्गा बना देता था। यदि मुर्गा नहीं बनाया होता, कमची की मार पुट्ठों पर नहीं लगाई होती, तो आज हम बैल चरा रहे होते,
भैंस चरा रहे होते। धन्यवाद उसको जिसने कमची मारी तो क्या, मुर्गा बनाया तो क्या, कान उखाड़ा तो क्या, पर पढ़ाया भी इस तरीके से कि सबक याद होते हुए चले गए। हम डिवीजन लाते हुए चले गए, कभी फेल नहीं हुए। धन्य है हमारा गुरु जिन्होंने कमचियां लगाई। कैसा प्यार भरा हमारा गुरु और कैसे प्यार भरे वे बालक जिनके बीच हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम समय व्यतीत हो गया।
अब कहाँ है वैसा प्रेम?
मित्रों,
हमने और आपने लंबी लंबी जिंदगियां व्यतीत की, लेकिन वैसा निश्चल प्रेम और निर्मल प्रेम कहाँ देखा जो छोटे छोटे स्कूल में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों में होता है।
हम आपके यहाँ कोका कोला पीने गए और हमने आपको पान खिलाया।
इस पान खिलाने के पीछे भी मेरी एक चाल थी और कोका कोला पिलाने के पीछे भी आपकी एक चाल थी। जब मैं आपके यहाँ गया था तो आपने कहा था कि आचार्य जी, आपके बेटे का विवाह है, साड़ी खरीद ले जाइए। कितने दाम की साड़ी है?
अजी साहब,
दाम की क्या पूछते हैं, हमारे पिताजी और आपके पिताजी तो हमेशा के जान पहचान वाले थे।
दुकान आपकी है, ले जाइए।
उस समय आपने सिर्फ कोका कोला मंगाया था और मुझे पिलाया था, और जब मैं साड़ी खरीद कर चला आया तो बाद में पता चला कि आपने मेरी जेब काट ली थी। इसी तरह जब मैंने आपको पान खिलाया था तो मेरे मन में जाने क्या क्या विचार भरे हुए पड़े थे। जिंदगी भर हम मित्रताएं करते रहे, लेकिन वह छल और दम से भरी हुई, कामनाओं से भरी हुई शतरंज की तरीके से हमारी मित्रताएं रहीं। जब हमारा काम पूरा हो गया तो हमने इस तरह से आंखें फेर ली जैसे कि पिंजरे में से निकलने के बाद तोता आंखें फेर लेता है।
हम ढूंढते हैं स्वर्ग। मित्रों,
हमारे जीवन में से मित्रता का रस चला गया।
हमारा अंतःकरण सदा से तलाश करता रहा है कि कोई सच्चा मित्र मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं।
पर ऐसा मित्र हमें कहां से मिले और कहां से मिले? सखा मित्र के बिना, साथी सखा के बिना सूना जीवन एकाकी प्रेत और पिशाच की तरह से मरघट में बैठा रहता है। मरघट में बैठे रहने वाले भूत प्रेत कैसे होते हैं? जंगलों में रहने वाले लोग स्कर्ट नामक एक जानवर को जानते हैं। जंगली सुअर जब घूमते घूमते अपने समूह से अलग चला जाता है, अकेला रहने लगता है, तो स्कर्ट कहलाता है। वह बड़ा भयंकर होता है।
जिन दिनों मैं अज्ञातवास में रहा, स्कर्ट जानवर को हमेशा तलाशता रहा।
इसी तरह जब कभी हिरन झुंड से बाहर रहने लगता है, तो बड़ा खूंखार हो जाता है। जहां भी मौका मिलता है किसी भी जानवर में अपनी सींग घुसेर देता है, अकारण हमला कर देता है। लोग इनसे बचकर अपना काम करते हैं और दूसरों को बचाव के उपाय बताते रहते हैं।
मित्रों,
हम भी स्कर्ट के तरीके से हैं। हमारा कोई सखा नहीं, हमारा कोई मित्र नहीं, कोई सहोदर नहीं, कोई हमारा प्रेमी नहीं है। सभी शतरंज की मोहरों के तरीके से हैं, जिनको हम यहाँ से उठाकर वहाँ रख देते हैं।
जिसकी गोटी लाल हो जाती है वह बढ़िया, और जिसकी गोटी लाल नहीं हुई वह बेचारा सारे जीवन भर फंस गया।
आती है याद वह खूबसूरत दुनिया।
मित्रों,
जब हम याद करते हैं बचपन के उन लोगों को जो ज्वार की रोटी ले करके आते थे और हम लोग गेहूं की रोटियां ले करके आते थे,
सब बैठ जाते थे। उनमें एक ब्राह्मण था, एक बनिया था, एक नाई था और एक कायस्थ था। सबके सब बैठे हुए एक दूसरे की रोटियां खा रहे होते थे। न उसको कायस्थ का ज्ञान था, न उसको ब्राह्मण का। जब बड़े हो गए तो जाति बिरादरियों के बंधनों में हमारा सामाजिक जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गया।
बचपन में हमने नाई के लड़के के साथ ज्वार की रोटियां खाई थी।
याद आता है वह निश्चल प्रेम, कृतज्ञता भरा हुआ जीवन। मित्रों, आकांक्षा होती है, मन चाहता है कि वैसा ही प्रेम भरा हुआ जीवन फिर दोबारा मिल जाए।
जब याद आती है कृतज्ञता भरी जिंदगी, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यह खूबसूरत दुनिया न जाने हीरों से बनाई गई है या जवाहरातों से। जब हमको अध्यापक याद आते हैं, छोटे बालक याद आते हैं, अपने भाई याद आते हैं, बुआ याद आती है, बड़ी बहन याद आती है जो हमको गोदी में लिए लिए फिरती रहती थी, मालूम पड़ता है कि यह दुनिया कितनी खूबसूरत, कितनी त्याग से भरी हुई, आनंद और उल्लास से भरी हुई है। जब हमको समाज का ज्ञान आता है, तो मालूम पड़ता है कि कितने लोग अत्यधिक ज्ञान का दोहन करते चले गए और सारा ज्ञान छोड़ करके हमारे पास रख गए हैं।
यह है स्वर्ग, यही है अमृत। मित्रों, छह आने की गीता खरीद कर ले आते हैं और भगवान कृष्ण का वह ज्ञान जो अर्जुन को मिला था हमको मिल जाता है। धन्य है वह गीता का रखवाला, धन्य है वह छापे खाने वाला, धन्य है वह कागज बनाने वाला। टाटा मिल को धन्यवाद जो कागज की रिम बनाता हुआ चला जाता है और हमको गीता मिल गई।
इस तरह का भाव जब आता है, तो मालूम पड़ता है कि दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग रहते हैं और बेहतरीन लोग रहते हैं। हम जहां कहीं भी निगाह फिरा कर देखते हैं, हमको इस दुनिया में एक ही चीज मालूम पड़ती है कि यह बेहतरीन है और अच्छे लोग हैं। दुनिया में प्रेम और सौभाग्य भरा हुआ पड़ा है।
मित्रों,
यही है वह अमृत जिसकी लहरों में हम सरकते हुए चले जा सकते हैं। स्वर्ग आपके पास है। मक्का की रोटियों में स्वर्ग है, ज्वार बाजरे की रोटियों में स्वर्ग है और फटे हुए कपड़ों में स्वर्ग है। रेशमी कपड़ों में आग जलती है, इसमें तेजाब भरा पड़ा है। मिठाइयों में पोटेशियम साइनाइड भरा पड़ा है जो आपके पेट को फाड़ देगा। आपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से जो आकांक्षाएं पाल रखी हैं कि हमको अमुक सामान मिल जाएगा, अमुक चीजें मिल जाएंगी, अमुक चीज हमारे पास कम है, हमें और चाहिए। जो चीज हमको मिल जाती है उनका उपयोग करना हमको कहाँ आता है। हम उनको जोड़ना जमा करना शुरू करते हैं और जोड़ते हुए जमा करते हुए हमारे ऊपर मुसीबत चढ़ती चली आती है।
संग्रह नहीं, वितरण। मित्रों, शहद की मक्खी को हमने देखा, वह शहद जोड़ती हुई जमा करती हुई चली गई।
उसने कहा कि हमको खोने का डर नहीं।
छोटे बच्चे बच्चियां चिल्लाई, क्या माताजी हमको शहद मिल जाएगा?
नहीं, यह तो जमा करके रखा जाएगा और इससे बहुत मुनाफा कमाया जाएगा।
एक दिन बंदर आया और छत्ते को तोड़ डाला।
सारा का सारा शहद जमीन के ऊपर टपक गया, बिखर गया, धूल और रेत में मिल गया।
मक्खियां मर गईं। यही हाल मनुष्य का है। धन का थोड़ा सा लाभ ही उसको मिल पाता है।
क्या हमने उसका उपयोग करना जाना? उपयोग करने का धन आता है क्या?
हमको शरीर मिला,
क्या हम शरीर का उपयोग कर सके?
जो स्वास्थ्य आपको मिला, क्या उसका इस्तेमाल ठीक प्रकार से आपने कर लिया? फिर आप कौन से मुंह से भगवान से मांगने चले हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना दीजिए?
आपको जो धन मिला हुआ है, आपको जो अकल और बुद्धि मिली हुई है, क्या आपने उसका सही इस्तेमाल कर लिया?
यदि नहीं तो कौन सा गुण है जिसको लेकर आप वरदान मांगने के लिए चले थे कि ज्यादा बुद्धि दी जाए? ज्यादा शिक्षा दी जाए।
जो आपको मिला हुआ था उसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत मौके पड़े थे और आप चाहते तो उसका प्रयोग कर सकते थे और दुनिया में शांति की धाराएं बहा सकते थे, लेकिन आप तो हमेशा संग्रह की बात सोचते रहे, बढ़ाने की बात सोचते रहे, जमा करने की बात सोचते रहे, स्वामित्व की बात सोचते रहे,
मालिक बनने की बात सोचते रहे।
उपयोग की बात आपके जीवन में कहाँ आई?
दृष्टिकोण उदात्ता हो तो स्वर्ग। मित्रों,
उपयोग की बात यदि आपके जीवन में आ गई होती तो जो कुछ भी आपको मिला हुआ है बहुत है। इससे आप दुनिया में, समाज में ऐसी धाराएं बहा सकते हैं जिससे प्रेम, आनंद, उल्लास व संतोष आपके चारों ओर उमड़ता हुआ चला आ सकता है।
मित्रों, मरने के बाद स्वर्ग देखने की कल्पना निरर्थक है।
हमको और आपको स्वर्ग में यदि भेज भी दिया जाए तो हम थोड़े ही दिनों में उसे नरक बना देंगे। ये कौन आ गए? ये वो हैं जो गायत्री मंदिर में अनुष्ठान कर रहे थे।
ये स्वर्ग क्यों आ गए? इन्होंने स्वर्ग को भी नरक बना दिया।
हम और आप जैसे मनुष्य यदि स्वर्ग लोक में भेजे जाएं, तो थोड़े दिनों में वहाँ के पेंटर को बुलाना पड़ेगा और वहाँ के साइन बोर्ड के ऊपर चेंज कराना पड़ेगा और लिखा देना पड़ेगा कि ये है नरक। और अच्छे मनुष्य जिनके दृष्टिकोण उदार और उदात्त हों, वे कहीं भी रहें, जंगलों में रहें, भूखे लोगों के बीच रहें, मक्का की रोटी खा करके रहें, किसी भी तरीके से रहें और गरीबी में जीवन जिएं, वे लोग वहीं स्वर्ग पैदा कर सकते हैं।
मैं अपना स्वर्ग बना लूंगा।
संत इमर्सन की अंग्रेजी में बहुत सी किताबें हैं। आध्यात्मिक जीवन के ऊपर उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। हर किताब के पहले पन्ने पर उनका एक मंत्र है। उसमें उन्होंने लिखा है, मुझे नरक में भेज दो, मैं अपने लिए वहीं स्वर्ग बना लूंगा। हर पुस्तक के पहले पन्ने पर यह एक ही मंत्र मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। किताबें अगले पन्ने से शुरू होती हैं और पहले पन्ने पर उनकी केवल एक ही आस्था है कि स्वर्ग कहीं है नहीं, वह तो बनाया जाता है। स्वर्ग तैयार किया जाता है, स्वर्ग अपने आप निर्मित किया जाता है। और वह स्वर्ग मनुष्य की आंखों में रहता है, स्वर्ग भावनाओं में रहता है, स्वर्ग अंतःकरण में रहता है।
आध्यात्मिकता का अंतिम परिणाम है स्वर्ग। और मित्रों, स्वर्ग का अर्थ है सही विचार करना और सही चीज देखने की शैली।
इसी का नाम है फिलॉसफी और इसी का नाम है दर्शन।
यदि दुनिया को नए ढंग से, नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करें तो आपको क्या से क्या देखने को मिलेगा? स्वर्ग अपने ही चारों ओर बिखरा हुआ दिखाई पड़ेगा। आज की बात समाप्त। ओम शांति।